दूसरा तवारीख 18वां बाब। और यहूसफ्त की दौलत और इज्जत फरावान थी, और उसने अखियब के साथ नाता जोड़ा, और चंद बरसों के बाद वो अखियब के पास सामरिया को गया, और अखियब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़िबा किए और उसे अपने साथ रम्मात जल्लात पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इसराइल के बादशाह अखियब ने यहूदा के बादशाह यहूसफ्त से कहा, तू मेरे साथ रम्मात जल्लात को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तू है, और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, सो हम लड़ाई में तेरे साथ होंगे। और यहूसफ्त ने शाह इसराइल से कहा, आज जरा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को जो 400 मर्द थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा, हम रामात जल्लात को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। पर यहूसफ्त ने कहा, क्या यहां इनके सिवा खुदावंत का कोई नबी नहीं, ताकि हम उससे पूछें? शाह इसराइल ने यहूसफ्त से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिया से हम खुदावंत से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशनगोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है। यहूसफ्त ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदादार को बुलाकर हुक्म किया कि मिकाया बिन इमला को जल्द ले आ। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यहूसफ्त अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वो सामरिया के फाटक के मुदख्खल पर खुली जगह में बैठे थे, और सब अंबिया उनके हजूर नबूवत कर रहे थे। और सदकिया बिन कनाना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे एरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाएं। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रामात जल्लात को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे ये कहा, देख, सब अंबिया एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी जरा उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूंगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जल्लात को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो, और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूं कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानिंद परागंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब शाह इसराइल ने यहूसफ्त से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशिनगोई करेगा। तब वो बोल उठा, अच्छा तुम खुदावंद के सुखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि शाहे इसराइल अखियब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रमात जल्लाद में मकतूल हो। और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रू निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रू बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रू डाली है और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सदकिया बिन केनाना ने पास आकर मिखाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावंद की रू तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई? मिखाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छिपने को घुसेगा। और शाहे इसराइल ने कहा, मिखाया को पकड़कर उसे शहर के नाजम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ और कहना कि बादशाह यूं फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाना में रखो और उसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। मिखाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावन ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उसने कहा, ए लोगो तुम सब के सब सुन लो। सो शाहे इसराइल और शाहे यहूदा यहूसफ्त ने रामात जलात पर चढ़ाई की। और शाहे इसराइल ने यहूसफ्त से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाहे इसराइल ने भेष बदल लिया और वो लड़ाई में गए। इधर शाहे एराम ने अपने रथों के सरदारों को हुक्म दिया था कि शाहे इसराइल के सिवा किसी छोटे या बड़े से जंग ना करना। और ऐसा हुआ कि जब रथों के सरदारों ने यहूसफ्त को देखा तो कहने लगे, शाहे इसराइल यही है। सो वो उससे लड़ने को मुड़े, लेकिन यहूसफ्त चिल्ला उठा और खुदावन ने उसकी मदद की और खुदा ने उनको उसके पास से लौटा दिया। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाहे इसराइल नहीं है तो उसका पीछा छोड़कर लौट गए। और किसी शख्स ने यूं ही कमान खींची और शाहे इसराइल को जोशन के बंदों के बीच मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा, बाग मोड़ और मुझे लश्कर से निकाल ले चल, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूं। और उस दिन जंग खूब ही हुई, तो भी शाम तक शाहे इसराइल एरामियों के मुकाबले अपने को अपने रथ पर संभाले रहा और सूरज डूबने के वक्त के करीब मर गया।